आस्तिक अरुणिमा को लेकर सीधे कमरे में आता है और उसे बेड के कॉर्नर पर पटक देता है। अरुणिमा संभाल नहीं पाती और सीधे बेड पर गिर जाती है। उसकी साड़ी का आंचल उसके सीने से हट जाता है। वो डरते हुए बेड के ऊपर बैठ जाती है और अपनी कांपती हुई आवाज़ में आस्तिक से कहती है, नहीं आस्तिक, मैंने कुछ भी नहीं किया है। मेरा यकीन करो, मैंने सच में कुछ नहीं किया। तुम्हें याद है हमारी शादी की रात मैंने तुमसे क्या कहा था? याद है या मैं फिर से याद दिलाऊं? आस्तिक ने ये बात इतनी जोर से कही थी कि अरुणिमा अपनी जगह पर ही सिकुड़ गई। उसकी चिल्लाने की आवाज़ से अरुणिमा ने अपने दोनों घुटने मोड़कर अपना चेहरा उनमें छुपा लिया। उसकी आंखों से आंसू तेजी से बह रहे थे। आस्तिक अरुणिमा के पास आता है और ठीक उसके सामने खड़े होकर सवाल करने लगता है, मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया है, प्लीज़ मुझे चोट मत पहुंचाना, मैं सच कह रही हूँ, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। अरुणिमा रोते हुए खुद को चोट ना पहुंचाने की गुहार लगा रही थी। तभी आस्तिक ने गुस्से में उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और उसे घुटनों से उठाकर अपनी तरफ कर लिया। अरुणिमा डरती हुई नज़रों से आस्तिक को देखने लगी। आस्तिक की लाल आंखें इस वक्त इतनी भयानक लग रही थीं कि अरुणिमा की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उसकी नज़रों से नज़र मिला सके। लेकिन आस्तिक ने उसके दोनों गालों को कसकर पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ देखने पर मजबूर किया। जवाब दो, तुम्हें याद है कि हमारी शादी की रात मैंने तुमसे क्या कहा था? ये आखिरी बार है जो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ अरुणिमा, मैं अपनी बात बार बार नहीं दोहराऊंगा। आस्तिक ने गुस्से में धमकी भरे अंदाज में चेतावनी दी। अरुणिमा का पूरा बदन सुन्न हो गया था। उसके हाथ पैर और चेहरा सब ठंडे पड़ गए थे। वो खुद को रोक नहीं पा रही थी। उसकी आंखों से आंसू इस तरह बह रहे थे जैसे उसके शरीर से प्राण निकल रहे हों। अरुणिमा ने काश की अपनी आंखें बंद की और आस्तिक के सवालों पर गौर करने लगी। उसे उनकी शादी की रात याद आई जब आस्तिक ने वो बात कही थी जिसने उनकी जिंदगी में एक दीवार खड़ी कर दी थी। जिस दिन आस्तिक अरुणिमा को शादी करके रायचंद मेंशन लेकर आया था, उसी दिन वो उसे वहां अकेला छोड़कर चला गया था। अरुणिमा पहली ऐसी दुल्हन थी जो अपनी रिसेप्शन पार्टी में अकेली खड़ी थी। सबको यही बताया गया था कि आस्तिक किसी जरूरी काम से गया है और उसका जाना बहुत जरूरी था। अगर वो नहीं जाता तो कंपनी को भारी नुकसान हो सकता था। लेकिन अरुणिमा को शक हो गया था कि आस्तिक बिजनेस की वजह से नहीं बल्कि किसी और कारण से गया है। पुष्कर जी ने अरुणिमा को विश्वास दिलाया कि आस्तिक जल्द ही वापस आ जाएगा। अरुणिमा ने उनकी बात पर यकीन कर लिया और उसे एक बात की तसल्ली थी कि रिसेप्शन पार्टी में उसके माता पिता बहुत खुश नजर आ रहे थे। उन्हें खुश देखकर अरुणिमा को एहसास हुआ कि शायद उसने सही कदम उठाया है और अपने माता पिता की परवरिश का एहसान चुकाया है। हालांकि रिसेप्शन पार्टी में बेला ने अपनी सहेलियों के साथ मिलकर कोई कसर नहीं छोड़ी थी अरुणिमा को नीचा दिखाने की। उसने कहा था, ये इकलौती ऐसी दुल्हन होगी जो अपनी रिसेप्शन पार्टी में अकेली खड़ी है। लेकिन अरुणिमा ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। जैसे ही पार्टी खत्म हुई, अरुणिमा को गाड़ी में बिठाकर आस्तिक के प्राइवेट बंगले में भेज दिया गया जहां उनकी वेडिंग नाइट होनी थी। नेहा की ने यही बताया था कि उनकी फर्स्ट नाइट आस्तिक के बंगले में ही होगी और आस्तिक अपना काम खत्म करके सीधे वहां आएगा। अरुणिमा की एक कॉलेज फ्रेंड जो उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी, अवनी, और सिर्फ वही इकलौती ऐसी लड़की थी जिसे ये पता था कि अरुणिमा का देव के साथ पहले एक रिश्ता रह चुका है। देव के साथ रिश्ते से बाहर निकलने में और आस्तिक के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने में अवनी ने ही अरुणिमा को समझाया था, क्योंकि वो हमेशा अपनी दोस्त का भला चाहती थी। अरुणिमा के आस्तिक के बंगले में जाने से पहले अवनी ने उसे एक हॉट और ट्रांसपेरेंट नाइटी दी थी जो कि आज की रात को खास बनाने वाली थी। उसने स्पेशली कहा था कि इसे ही पहनकर आस्तिक के सामने जाना। अरुणिमा को पहले तो ये सब बहुत अजीब लगा, लेकिन जिस तरह से अवनी ने उसे समझाया उसी तरह अरुणिमा ने खुद को भी समझा लिया कि आस्तिक उसका पति है और अब पूरी जिंदगी उसे आस्तिक के साथ ही इस रिश्ते में रहना है। अपने गुजरे कल को भूलकर उसे आस्तिक के साथ एक नई जिंदगी शुरू करनी है और इसके लिए ये सब करना जरूरी था। अवनी द्वारा दी गई अजीबोगरीब नाइटी को आखिरकार अरुणिमा ने पहन ही लिया, लेकिन उसने एक शॉल से खुद को ढक लिया क्योंकि वो इस कपड़े में काफी अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। लेकिन फिर भी अरुणिमा ने ये किया क्योंकि वो इस शादी के साथ ईमानदार थी और उसने खुद से वादा किया था कि अपनी शादी को सफल बनाएगी। बंगले में पहुंचकर अरुणिमा अपने कमरे में जाती है। वो हैरान रह जाती है क्योंकि ये आस्तिक का कमरा नहीं था, उसे एक अलग कमरे में रखा गया था और ये बहुत साधारण सा कमरा था। ना तो इसमें कोई सजावट थी और ना ही कुछ ऐसा जो ये दिखा सके कि आज उनकी पहली रात है। अरुणिमा ने सोचा कि शायद रायचंद मेंशन इसके लिए तैयार किया गया होगा, इसलिए आस्तिक ने इस घर को सजाया नहीं होगा। वैसे भी अरुणिमा ने मन में सोचा कि यह अब उसका ही घर है तो क्या फर्क पड़ता है अगर ये सजा है या नहीं। उसने इस बात पर ज्यादा गौर नहीं किया। वो तैयार होकर कमरे में बैठी हुई थी और आस्तिक का इंतजार करने लगी। बैठे बैठे ही वो बेड के कोने में टिककर कब सो गई उसे पता ही नहीं चला और जब दरवाजा खुलने की आवाज आई तब जाकर उसे एहसास हुआ कि आस्तिक कमरे में आ चुका है। वो उसके इंतजार में ही सो गई थी। वो तुरंत उठकर खड़ी हो जाती है और आस्तिक को देखती है। आस्तिक कमरे में दाखिल होता है और उसकी काली आभा से पूरे कमरे का माहौल अचानक से डरावना महसूस होने लगता है। पता नहीं क्यों आस्तिक को अपने सामने देखकर अरुणिमा कांपने लगती है। उसने जैसे ही आस्तिक की उन भूरी आंखों में देखा, न जाने क्यों आस्तिक को अपने करीब आते हुए देखकर उसके अंदर एक अजीब सा डर पैदा हो गया। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि वो आस्तिक की आंखों में अपने लिए घृणा के भाव देख रही थी। आस्तिक की वो तिरस्कार भरी आंखें अरुणिमा को चुभ रही थी और अरुणिमा ने देखा कि आस्तिक के हाथों में एक वाइन की बोतल है, जिसे पीता हुआ वो कमरे में दाखिल हो रहा है। अरुणिमा बेड के कोने में खड़ी थी और आस्तिक कमरे के दूसरे कोने में जाकर खड़ा हो गया। अरुणिमा पर डर इतना ज्यादा हावी हो गया था कि वो पीछे जाने लगी, लेकिन दो कदम के बाद ही पीछे दीवार आ गई और अरुणिमा के पास अब जाने के लिए जगह ही नहीं बची थी। आस्तिक ने वाइन का एक घूंट लिया और बोतल को पास ही रख दिया। न जाने क्यों अरुणिमा को आस्तिक से घबराहट हो रही थी और डर भी लग रहा था, जबकि अब तक आस्तिक ने कुछ नहीं किया था और उनकी कोई बात भी नहीं हुई थी। आस्तिक धीरे धीरे कदमों से अरुणिमा के पास आया। अरुणिमा डरती हुई आस्तिक को देख रही थी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने मजबूती से अपने श्रग को पकड़ रखा था। सो माई डियर वाइफ, चलो कुछ चीजें आज क्लियर कर देते हैं, आस्तिक ने बोलना शुरू किया। अरुणिमा हैरानी से उसे देख रही थी। आस्तिक ने उसे ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा और फिर एक तिरस्कार भरी नजर से चेहरा फेरते हुए कहा, बंद दरवाजे के पीछे हम दोनों अजनबी हैं और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। सिर्फ लोगों और परिवार के सामने तुम मेरी बीवी की तरह पेश आ सकती हो। इसके अलावा अकेले में कभी भी मुझसे रिश्ता बनाने की कोशिश मत करना। आस्तिक ने अपनी बात खत्म की और अरुणिमा हैरानी से उसे सुनती रही। उसने अभी अभी क्या कहा? क्या उसने ये कहा कि उन दोनों का एक कमरे में कोई रिश्ता नहीं है और अरुणिमा बस दुनिया के लिए नाममात्र उसकी बीवी है? अरुणिमा ने हैरानी से आस्तिक को देखते हुए कहा, मैं कुछ समझी नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं?
तभी आस्तिक ने अपना एक हाथ जोर से दीवार पर मारा। अरुणिमा बुरी तरह से कांप गई और कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। आस्तिक ने गुस्से में अरुणिमा के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, मैं दुनिया में सिर्फ तीन चीजों से प्यार करता हूँ और वो तीन चीजें ही मेरी जिंदगी है। पहली है मेरी इमेज, दूसरी है मेरी पावर और प्रॉपर्टी, और तीसरी है मेरा लक्ष्य, जिससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। समझी माय डियर वाइफ? आस्तिक अपने जीवन की तीन सबसे अनमोल चीजों के बारे में बताते हुए अपने दूसरे हाथ से अरुणिमा की ठुड्डी पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ करता है। अरुणिमा डरते हुए आस्तिक को देखने लगती है। उसकी आंखें डर से पूरी तरह भरी हुई थीं और आस्तिक उसके चेहरे पर यह डर देखकर मुस्कुरा रहा था। उसने एक डेविलिश स्माइल के साथ अरुणिमा की आंखों में देखते हुए कहा, ये तीन चीजें मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा प्यारी हैं और अगर इनमें से कुछ भी खराब हुआ तो समझ लो तबाही मच जाएगी, और तबाह होने वाला शख्स कौन है मुझे इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए गलती से भी मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करना। ये कमरा तुम्हारा है और सिर्फ ये कमरा ही तुम्हारा रहेगा, वो भी तब तक जब तक तुम यहाँ हो। इसके अलावा कभी भी मुझ पर अपना हक जताने की कोशिश मत करना। मेरी बीवी होने के नाते तुम्हें जो ऐशो आराम चाहिए ले सकती हो, लेकिन खबरदार जो मेरी रेपुटेशन खराब करने की कोशिश की। आस्तिक की उन लाल आंखों ने अरुणिमा को एकदम भाव शून्य कर दिया था। अचानक से अरुणिमा अपने उस डरावने पल की यादों से बाहर निकलकर वर्तमान में आ जाती है, जब एक बार फिर आस्तिक ने उसे दीवार से दबोच लिया था। वो उससे सवाल कर रहा था। ये वही कमरा था, वही स्थिति थी और वही शख्स जो एक बार फिर अरुणिमा के अस्तित्व को चोट पहुंचा रहा था। अरुणिमा को याद आ जाता है कि आस्तिक ने उससे कहा था कि उसकी जिंदगी में सिर्फ तीन चीजें हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं। पहली है उसकी इमेज, यानी उसकी रेपुटेशन। आस्तिक अपनी रेपुटेशन और अपने नाम से बहुत प्यार करता है और आज अरुणिमा की वजह से ही उसका नाम खराब हुआ था। अरुणिमा डरते हुए आस्तिक को देख रही थी। आस्तिक उसके चेहरे पर डर देखकर समझ गया था कि उसे याद आ गया है कि उसकी बताई गई शर्तों में सबसे पहले क्या थी। उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई और उसने धीरे से अरुणिमा की गालों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए कहा, तो तुम्हें याद आ गया कि मैंने तुम्हारे सामने क्या शर्त रखी थी? चलो अच्छी बात है अगर तुम्हें याद आ गया है। जब तुम्हें सजा मिलेगी तो तुम्हें पता रहेगा कि तुम्हें किस चीज की सजा मिल रही है। तुम्हारी वजह से लोगों के बीच मेरा नाम खराब हुआ है, लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। तुम्हारी वजह से मेरी रेपुटेशन मिट्टी में मिली है। तुम्हारी वजह से सब मुझ पर हंस रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं पता ये सब किसने किया है। अरुणिमा अपनी कांपती हुई आवाज में एक आखिरी बार रहम की भीख मांग रही थी। हालांकि उसे पता था कि आस्तिक रहम दिखाने वालों में से नहीं है। आस्तिक शैतानों की तरह हंसने लगा और उसकी हंसी ने कमरे में और ज्यादा दहशत का माहौल बना दिया। उसने अरुणिमा को डरते हुए देखा और अपनी डरावनी आवाज में कहा, तुम्हें छोड़ दूं? तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूं जान, तुम मेरी बीवी हो, हमारी शादी हुई है। वो क्या कहते हैं, हाँ, सात जन्मों का साथ वाला, साथ है हमारा, सात जन्म छोड़ो, सात साल भी नहीं हुए हमारी शादी को, इतनी जल्दी तो नहीं छोड़ने वाला हूं मैं तुम्हें। अभी मुझे तुम्हारी जरूरत है और तुम ऐसा कैसे सोच रही हो कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगा? अगर मुझे ऐसा कुछ करना ही होता तो उस वीडियो के सामने आते ही तुम्हारी जान ले लेता, लेकिन तुम अब तक जिंदा हो, सांस ले रही हो, वरना मन तो मेरा बहुत किया था कि तुम्हें जान से मार दूं, पर फिलहाल तुम्हें नुकसान पहुंचाने का आइडिया मुझे ड्रॉप करना पड़ा, क्योंकि अभी मुझे तुम्हारी जरूरत है। अरुणिमा एकदम दंग रह गई आस्तिक की बात सुनकर। आस्तिक ने अरुणिमा की बाजू पकड़कर उसे कोने में बैठा दिया। अरुणिमा हैरानी से उसे देखती रह गई। आस्तिक ने उसकी साड़ी उठाई और लपेटते हुए उसके कंधे पर रख दी। फिर उसने अरुणिमा के बिखरे हुए बालों को धीरे धीरे अपनी उंगलियों से संवारना शुरू किया। अरुणिमा उसे हैरानी भरी नजरों से देख रही थी। आस्तिक मुस्कुराते हुए अरुणिमा को देख रहा था, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में कुछ ऐसा राज छिपा था जिसे अरुणिमा समझ नहीं पा रही थी। आस्तिक एक पल के लिए साइको इंसान की तरह हरकतें कर रहा था। अभी अभी वो अरुणिमा पर चिल्ला रहा था, उसके कैरेक्टर पर उंगली उठा रहा था और अगले ही पल बिल्कुल शांत होकर उसे संवारने लगा। अरुणिमा उसे साइको की तरह हैरानी भरी नजरों से देख रही थी। आस्तिक उसके बालों को सही करते हुए कहता है, आज रात तैयार रहना। अरुणिमा की आंखें छोटी हो जाती हैं और वो हैरानी से आस्तिक को देखने लगती है। आस्तिक अपनी डेविल स्माइल को और गहरी करते हुए कहता है, हमारी फर्स्ट नाइट नहीं हुई है, तुम्हारी भी कुछ इच्छाएं होंगी जो अधूरी रह गई होंगी, तभी तो तुम कहीं भी चली जाती हो। एक मर्द होने के नाते मैं तुम्हारी इच्छाओं को समझ सकता हूँ। वो क्या है ना, जवानी में अगर ये सब ना मिले तो रात में नींद नहीं आती। पर तुम फिक्र मत करो, आज रात मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं और ख्वाहिशें पूरी कर दूंगा, वो भी इस तरीके से कि तुम कभी किसी और के पास नहीं जा पाओगी। आज रात अच्छे से तैयार रहना। गेट रेडी वेल टुनाइट फॉर आवर वेडिंग नाइट।